मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन और सोलोमन द्वीप समूह के बीच संभावित सुरक्षा समझौते पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के सामने मिली सफलता क्रेमलिन को बातचीत के लिए मजबूर करेगी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया सोलोमन द्वीप समूह में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखना जारी रखेगा। सोलोमन द्वीप ने पुष्टि की है कि वो चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते का मसौदा तैयार कर रहा है जिससे दक्षिण प्रशांत में चीन की सैन्य उपस्थिति बढ़ेगी। एक लीक हुए मसौदा दस्तावेज से पता चलता है कि समझौते में प्रशांत क्षेत्र में चीनी युद्धपोत और ऑस्ट्रेलिया के तट से 2000 किलोमीटर से कम दूरी पर एक चीनी नौसेना बेस रहेगा। दोनों प्रमुख दलों ने इस कदम की आलोचना की है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सोलोमन द्वीप समझौते पर ऑस्ट्रेलिया की आलोचना गैर जिम्मेदार है, लेकिन श्री मॉरिसन का कहना है कि वो पूरी तरह से असहमत हैं।
We've always been in the Pacific. We've always been there to support. Pacific nations know that we are part of their Pacific family and that we've always prioritized their needs and their interests and respected their sovereignty and haven't sought to influence them or interfere with them in any way. We've been there to support them. And that's what Pacific peoples understand about Australia.
Australia में COVID-19 के मामले लगातार बढ़े हुए हैं। New South Wales में कल रात 8 बजे तक 19,843 नए मामले दर्ज किए गए, 4 मौतें भी दर्ज हुईं। अस्पताल में 1,177 लोग हैं, जिनमें से 44 गहन देखभाल में हैं। विक्टोरिया में COVID-19 के कारण 9 और लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में 8,349 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। अस्पताल में 250 लोग हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 7,535 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तस्मानिया में 1,695 नए मामले सामने आए हैं। यूरोपीय आयोग के लिए अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लॉयन का कहना है कि रूस की ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता को कम करने और ईंधन की बिक्री से रूस को मिलने वाले अरबों डॉलर को सीमित करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी अभूतपूर्व है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ परिषद के शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सुश्री डेयर लॉयन ने कहा कि दोनों पक्ष हरित ऊर्जा में संक्रमण में तेजी लाने के लिए भी सहमत हुए हैं।
This morning, President Biden and I agreed on an unprecedented partnership to reduce Europe's dependency on Russian gas. And in parallel, we agreed in this partnership to really accelerate the green transition.
अमेरिका यूरोपीय संघ को 2022 में कम से कम अतिरिक्त 15 बिलियन क्यूबिक मीटर तरल प्राकृतिक गैस प्रदान करेगा, जो वर्ष के लिए रूसी एलएनजी की मात्रा की जगह होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की सेना रूसी सेना को रोकने में सफल रही है और इससे रूस को बातचीत पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन के नेता का कहना है कि इस नुकसान से रूसी अधिकारी समझ गए हैं कि बातचीत करना आवश्यक है।
Containing Russian actions. Our male and female defenders bring Russian authorities to a simple and logical thought. It's necessary to talk and to talk meaningfully, honestly, urgently and for the sake of the result, rather than for the sake of stalling.
श्री ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को दोहराया। यूक्रेन का उत्तरी शहर चर्निहिव पूरी तरह से कट गया है। रूसी सेना द्वारा पुलों और उसके आसपास की अन्य सड़कों को नष्ट करना जारी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर स्काई न्यूज द्वारा ली गई फुटेज से पता चलता है कि क्लस्टर बम के गोले एक ऐसे क्षेत्र में बिखरे हुए हैं जहां यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं। रिपोर्ट में स्काई क्रू ने वाहन द्वारा चर्निहिव में प्रवेश करने का प्रयास किया और उस पर बमबारी होती है।
Get out, get in, get in, get in, get in. Getting it from here.
चर्नीहेव के आसपास के गांवों में हवाई हमले के सायरन की आवाज, निवासियों को मृतकों का शोक मनाते देखा गया और नागरिक वाहनों और पैदल भागने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर कोरिया द्वारा अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सख्त प्रतिबंधों की मांग की है। यूएन में अमरीकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना है कि अमरीका सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को अद्यतन और मजबूत करने के लिए एक उपाय का प्रस्ताव करेगा जो मूल रूप से 2006 में उत्तर कोरिया के पहले परमाणु परीक्षण के बाद लगाए गए थे। सुश्री थॉमस ग्रीनफील्ड द्वारा पढ़े गए एक संयुक्त बयान में कई देशों ने कहा कि सुरक्षा परिषद को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए और उत्तर कोरिया को एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए।
अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, the United Arab Emirates in their national capacity, the United Kingdom and the United States condemn in the strongest terms the DPRK intercontinental ballistic missile launch on the morning of March 24th.
भारत में रियल एस्टेट सुपर टेक को 432 करोड़ रुपए की देनदारी से चूक जाने के बाद कल शुक्रवार को दिवालिया घोषित किया गया है। इस लोन चूक में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपर टेक इको विलेज 2 प्रोजेक्ट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया कर्ज शामिल है। परियोजना की लागत 1106.45 करोड़ रुपए है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 75 सेंट और भारत के 57.31 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में टेनिस में वाइल्ड कार्ड निक कैरियोस दुनिया के 7वें नंबर के ऑन्ड्रे रूबलेव को हराकर मियामी ओपन के अंतिम 32 में पहुंच गए हैं। 51 मिनट तक चले इस मैच में कैरियोस ने रूबलेव को 6-3, 6-0 से हराया। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में एक तो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।